ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम छठा स्कंद अध्याय 18। अध्याय का नाम है राजा इंद्र का वध करने के लिए दिति का व्रत। श्लोक संख्या 31-32 का तात्पर्य नहीं है तो मैं केवल पढ़ के सुनाऊंगा, और 33-34 श्वेत पट में लिखे हुए हैं तो उनको हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे। 31 है। एवं शुश्रूषितस्तात् भगवान् कश्यप स्त्रिया प्रहर्ष्य परम प्रीतो दितिमाहाभिनन्द्य च। हे प्रिय, अपनी पत्नी दिति के विनम्र आचरण से अत्यधिक प्रसन्न होकर परम शक्तिशाली साधु पुरुष कश्यप हंस पड़े और इस प्रकार बोले। तो आप लोग ये कथा प्रसंग तो जानते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो ये जो कथा प्रसंग है ये चल रहा है मरुतों की उत्पत्ति के बारे में। सुखदेव गोस्वामी कश्यप मुनि के संतानों का वंश वर्णन कर रहे हैं तो उनमें से दिति के वंश का वर्णन किया है और उसमें फिर ये बताते हैं कि दिति के जो है 49 पुत्र हुए मरुत नाम से और वे देवता बन गए, वो दैत्य नहीं कहलाए, है ना। इस पर परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि क्या कारण है कि दैत्यों के परिवार में पैदा हुए दिति के पुत्र हुए लेकिन फिर भी वो दैत्य नहीं कहलाए, देवता कैसे बन गए। इस विषय में फिर सुखदेव गोस्वामी विस्तार से ये कथा सुना रहे हैं। तो कथा ये है कि दिति के जब दोनों पुत्र मारे गए, दिति के दोनों पुत्र कौन है, हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष, भगवान के द्वारा मारे गए है? और इंद्र की सुरक्षा हुई और भगवान ने इनका वध किया। तो दिति ने जो है फिर इंद्र के ऊपर बहुत ईर्ष्या की, इंद्र के प्रति उसको बड़ी ईर्ष्या हुई है? और उसने सोचा कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र का वध करे। तो इस विचार से उसने अपने पति की सेवा करना शुरू किया। तो पति जो कश्यप मुनि है वे नहीं जानते हैं कि कैसा विचार है तो पत्नी की जो है सेवा से बहुत प्रसन्न हो गए। यहां बताया गया है कि एवं सुश्रुति तात कश्यप सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को तात शब्द कह रहे हैं। तात शब्द संस्कृत में एक ऐसा शब्द है जो कि कोई किसी के लिए भी प्रयोग कर सकता है ना, किसी को भी कोई प्रयोग कर सकता है, मतलब पुरुषवाची शब्द तात, है ना। भाई अपने भाई को भी तात कह सकता है, बड़ा भाई छोटे भाई को भी तात कह सकता है, छोटा भाई बड़े भाई को तात कह सकता है, पिता पुत्र को तात कह सकता है और पुत्र पिता को तात कह सकता है तो ये बड़ा सामान्य शब्द है तात, और बड़ा प्रिय, मतलब इससे जो है बड़ा मतलब प्रेम का जो है भाव सूचित होता है तात। सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को कहते हैं तात, है ना, तो इसमें मतलब बड़ा अपनापन है। सुखदेव गोस्वामी जो है परीक्षित महाराज के प्रश्न से बड़े प्रसन्न हुए हैं तो इसलिए बड़े अपनेपन के साथ सुखदेव गोस्वामी इस कथा को सुना रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि हे तात, अपनी पत्नी दिति के विनम्र आचरण से अत्यधिक प्रसन्न होकर के परम शक्तिशाली साधु पुरुष कश्यप हंस पड़े और इस प्रकार बोले। यहाँ कश्यप मुनि को भगवान कहा गया है तो अनुवाद में प्रभुपाद जी परम शक्तिशाली बताते हैं, भगवान नहीं, ठीक है ना। तो ज्यादा चाहिए कि भगवान शब्द का प्रयोग ना किया जाए, हालांकि भगवान शब्द का प्रयोग किया जाता है, ज्यादा चाहिए कि ना किया जाए क्योंकि इससे फिर भ्रम पैदा हो जाता है। हम कृष्ण को भगवान कहते हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, है ना। तो शास्त्रों में देवी भगवान शब्द का प्रयोग किसी शक्तिशाली व्यक्ति के लिए किया जा सकता है जिसके पास छह प्रकार के ऐश्वर्यों में से कोई भी ऐश्वर्य अधिक मात्रा में हो, धन बल ज्ञान वैराग्य यश सौंदर्य। तो किसी के अंदर कुछ भी गुण ज्यादा मात्रा में हो तो उसको भगवान कह दिया जाता है। लेकिन पहले लोग भ्रमित नहीं होते थे कि कृष्ण परम भगवान है या श्री भगवान है, या अभी तो लोग भ्रमित हैं। इसलिए इस समय की स्थिति देखते हुए ज्यादा अच्छे है कि हम लोग भगवान शब्द का प्रयोग ना करें, कश्यप मुनि के लिए, ब्रह्मा जी के लिए, शिव जी के लिए तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर प्रभुपाद अनुवाद में लिखते हैं, परम शक्तिशाली साधु पुरुष कश्यप हंस पड़े और रितिम आ है अभिनंद चा, अभिनंद अभिनंद का मतलब है अभिनंदन करते हुए, अभिनंदन अभिनंदन का मतलब है कि सम्मान करते हुए। कश्यप मुनि जो है दिति का बड़ा सम्मान करते हुए बोले, कश्यप श्री कश्यप वाचे, वरम वर मोरु प्रीतस्ते हम अनिंदिते स्त्रिया भर्तरी सुप्रीते कह काम यह चागमः। कश्यप मुनि ने कहा, हे अनिंद सुंदरी, मैं तुम्हारे आचरण से परम प्रसन्न हूँ, अतः तुम चाहे जो भी वर मांग सकती हो, यदि पति प्रसन्न हो तो चाहे इस लोक की या अन्य लोक की वो कौन सी इच्छा है जो पूरी ना हो सके। स्त्रिया भर्तरी सुप्रीते, अगर पति को अच्छी प्रकार से प्रसन्न कर दिया जाए, ये पति कैसा होना चाहिए? कश्यप मुनि जैसा, हाँ शक्तिशाली है ना। तो अगर स्त्री जो है पति को प्रसन्न करे तो इस जगत में ऐसी कौन सी इच्छा है जो उसकी पूरी नहीं हो सकती है? ठीक है, अब 33-34 चूंकि दोनों श्वेतपट में लिखे हुए हैं तो हम लोग जो है दोनों श्लोक पढ़ेंगे। पतिरेव हि नारीणाम् देवतम परमं विस्मृतम् मानसः सर्वभूतानां वासुदेवा श्रियापतिः स एव देवता लिंगेर नाम रूप विकल्पिते यजते भगवान पुंभी स्त्रीभिश्च पति रूपधृे पतिरेव हि नारीणां देवतं परमं विस्मृतम् मानसः सर्वभूतानां वासुदेवा श्रियापतिः स एव देवता लिंगैर नाम रूप विकल्पिते यजते भगवान पुंभी स्त्रीभिश्च पति रूपधृ। अब आप लोग एक एक पढ़ेंगे, जो व्यक्ति पहला पढ़ेगा तो उसके बाद दूसरा व्यक्ति दूसरा पढ़ेगा, ठीक है?
Thank you.
देवियां नहीं पहला वाला शब्दार्थ बोलिए पति ही पति एवो निस्संदेह ही निश्चय ही नारीणाम स्त्रियों की दैवतम देवता परमम परम सर्वश्रेष्ठ स्मृतम माना जाता है मानसः हृदय में स्थित सर्वभूतानां समस्त जीवात्माओं के वासुदेवः वासुदेव स्त्रियः सौभाग्य की देवी का पति ही पति सह वह एव निश्चय ही देवतालिंग देवताओं के स्वरूपों से नाम नाम रूप स्वरूप विकल्पित कल्पित इज्जते पूजा जाता है भगवान श्री भगवान पुंभी मनुष्यों के द्वारा स्त्री भी स्त्रियों के द्वारा च भी पति रूप धृक पति के रूप में अनुवाद मेरे पीछे बोलिए पति ही स्त्रियों का परम देवता है लक्ष्मीपति भगवान वासुदेव सबों के हृदय में स्थित हैं और सकाम भक्तों द्वारा विभिन्न नामों तथा देव रूपों में पूजे जाते हैं इसी प्रकार पति भगवान के रूप में पत्नी के लिए पूजा की वस्तु है तो तात्पर्य पढ़ने से पहले हम लोग इस श्लोक के शब्दों को समझेंगे कश्यप मुनि दिति से कह रहे हैं तो दिति ने जो कश्यप मुनि की सेवा की है उसकी प्रशंसा में उसके समर्थन में कश्यप मुनि दिति से कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कि तुमने जो कार्य किया है ये बहुत अच्छा किया है क्योंकि ये शास्त्रों के अनुसार है स्मृतम स्मृति श्रुति स्मृति ये सब शास्त्रों के अनुसार ये जो है बहुत अच्छा कार्य है कश्यप मुनि से कह रहे हैं कि तुमने मुझे प्रसन्न किया है मैं तुम्हारा पति हूं तो ये शास्त्रों से अनुमोदित है क्या पतिरेव ही नारीणाम देवतम परमम स्मृतम कि स्त्रियों के लिए जो पति है ये परम दैवत है दैवत का मतलब है पूजनीय जो विशेष रूप से पूजा सम्मान का पात्र हो सबसे अधिक पूजा और सम्मान का जो पात्र है वो पति होता है स्त्रियों के लिए स्मृतम लेकिन यहां बात समाप्त नहीं हुई कश्यप मुनि जो बात बता रहे हैं इसको समझिए क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण बात है तो लोग जो है इतना ही सोचते हैं इसके आगे नहीं सोचते है ना तो कश्यप मुनि क्या कह रहे हैं मानसः सर्वभूतानां वासुदेवः श्रीः पति वास्तव में तो ये भगवान वासुदेव हैं जो पूजे जाते हैं इस माध्यम से वास्तव में तो भगवान वासुदेव की पूजा होती है जो मानस यानी सबके हृदय में स्थित हैं और वो लक्ष्मी के पति हैं इस बात को समझना है कि श्रीमद् भागवत जो है मतलब ये अमल पुराण है ना, निष्कलंक पुराण है। तो इसमें जो है भगवान का जिस प्रकार से गुणगान हुआ है वो दूसरा दूसरे शास्त्रों में नहीं हुआ। तो कश्यप मुनि जो है जब ये बात बताते हैं तो इसके आगे फिर दूसरी बात बताते हैं कि वास्तव में तो पूजा किसकी हो रही है, हृदय में स्थित भगवान वासुदेव की पूजा हो रही है जो लक्ष्मी के पति हैं। मैं तो नहीं हूं, मैं तुम्हारा पति हूं, मैं तो लक्ष्मी का पति नहीं हूं, मैं तो भगवान वासुदेव नहीं हूं, लेकिन हृदय में सबके हृदय में जो भगवान वासुदेव हैं तो उनकी पूजा का माध्यम होता है पति। स्त्रियों के लिए जो है पति की जो पूजा है वास्तव में ये माध्यम है, वास्तव में पूजा तो हो रही है किसकी, भगवान वासुदेव की, है ना। तो स्त्रियों के लिए जो है परम देवत है, परम पूजनीय है पति। ये पति को नहीं सोचना चाहिए कि मैं जो है मतलब स्वतंत्र हूं, भगवान से स्वतंत्र अपने को नहीं सोचना चाहिए और फिर वो सोचने लगे कि मैं जो है अपनी पत्नी का भगवान हूं और मैं भोगूंगा। तो पति को जो है ये नहीं सोचना चाहिए कि पत्नी जो है मेरे भोग की वस्तु हो गई क्योंकि ये मुझे जो है मेरी पूजा कर रही है तो मैं इसको भोगूं। वास्तव में भोगने वाले भगवान हैं, परम भोक्ता भगवान है, और मेरी पूजा नहीं हो रही। पति क्या सोचता है कि मेरी पूजा नहीं हो रही है, मेरे माध्यम से भगवान की पूजा हो रही है। और पति जो है पारदर्शी माध्यम बने भगवान की पूजा का, कि भगवान की पूजा जो है मेरे माध्यम से हो रही है तो मैं अपनी पूजा ना समझूं, है ना। तो यहां पर जो है कश्यप मुनि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए जो है उपदेश दे रहे हैं। अभी कितने कृष्ण भावना भावित हैं कि उन्होंने जो है अदिति से यह कहा कि तुमने मेरी पूजा की, मेरी सेवा की, तो इससे भगवान की पूजा हुई है, भगवान की सेवा हुई है, मेरी सेवा नहीं हुई है, है ना। सएव देवता लिंगैर नाम रूप विकल्पित है, सएव वे ही एकमात्र देवता के रूप में और देवताओं के नाम से विकल्पित हैं, विकल्पित है। इज्जते भगवान कुंभी है, तो लोगों के द्वारा जो है पूजित वही होते हैं भगवान ही, है किसी देवता के नाम पर या किसी व्यक्ति के नाम पर भगवान की पूजा होती है। स्त्री भिश्च पति रूप, और स्त्रियों के लिए वो ये भगवान जो है पति के रूप में है। हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की भगवद्गीता 9:23 में श्री कृष्ण का कथन है। ये प्यन्न देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते पिमामे विकौन्तेय यजन्त विधि पूर्वकम्। हे अर्जुन, अन्य देवताओं की यज्ञ द्वारा जो भी उपासना की जाती है वो वास्तव में मेरे ही लिए होती है, किंतु ये बिना वास्तविक समझ बूझ के की जाती है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, अविधि पूर्वकम्। प्रभुपाद ने जो है ये श्लोक उद्धृत किया तो इसका मतलब क्या है, भगवान कह रहे हैं कि अन्य देवता के जो भक्त होते हैं, जो अन्य देवताओं के भक्त बन जाते हैं और वो श्रद्धा देवता की प्रति स्थिर कर लेते हैं और देवता की पूजा करते हैं, तो वे भी मेरी पूजा कर रहे हैं लेकिन अविधिपूर्वक, विधिपूर्वक नहीं है। इसका मतलब क्या है कि देवता की अगर आप पूजा करते हैं तो आपको देवता का भक्त नहीं बनना चाहिए, श्रद्धा आपकी जो है देवता के प्रति नहीं होना चाहिए, श्रद्धा और भक्ति आपकी होनी चाहिए भगवान के प्रति। उस देवता की आप पूजा कर रहे हैं उस देवता के माध्यम से आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति किसी देवता की पूजा करे, ये पन्न अन्य देवता भक्ता, मुझसे अतिरिक्त अन्य देवताओं के कोई भक्त जो लोग होते हैं, तो भक्त होते हैं तो देवता की पूजा तो कर रहे हैं, तो मेरी पूजा हो रही है, विधिपूर्वक नहीं हो रही, विधिपूर्वक नहीं हो रही। क्योंकि अगले श्लोक में भगवान कहते हैं हम सर्व यज्ञानां भोक्ता चा प्रभु रेव चा, क्योंकि सब देवताओं का, सब यज्ञों का भोक्ता मैं हूं और सबका प्रभु मैं हूं। न तो माम भी जानते, वो मुझे नहीं जानते हैं और देवता को स्वतंत्र मानते हैं, जिस देवता की पूजा करते हैं उस देवता को भगवान से स्वतंत्र मानते हैं, तो वे भगवान की पूजा कर रहे हैं लेकिन विधिपूर्वक पूजा नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये जो है मतलब प्रभुपाद जी ने श्लोक उद्धृत किया है, बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी है। ये समझना है ना। तो अगर देवता जो है अगर अपने को स्वतंत्र माने कि मेरी पूजा हो रही तो मैं भगवान से स्वतंत्र हो गया हूं या मैं ही भगवान हो गया हूं, तो वो भी जो है अपराधी होता है भगवान का। जैसे ब्रजवासी लोग इंद्र की पूजा कर रहे थे, तो ब्रजवासियों का जो है जो भाव था वो ऐसा नहीं था कि इंद्र के प्रति उनकी भक्ति या इंद्र के प्रति श्रद्धा थी, वो तो कर रहे थे इंद्र की पूजा कि करना चाहिए, इंद्र देवता हैं करना चाहिए, पूजनीय देवता हैं और वो जो है वर्षा के देवता हैं तो इंद्र की पूजा करना चाहिए। तो वो लोग तो ब्रजवासी लोग तो कर रहे थे भाई करना चाहिए कर्तव्य की भावना से, वो इंद्र के भक्त नहीं थे। लेकिन इंद्र का अपराध हो रहा था। क्या अपराध हो रहा था? इंद्र सोच रहे थे कि ये मेरा गुण है कि मेरी पूजा हो रही है, मैं जो है पूजित हो रहा हूं, तो ये जो है मतलब अपराध है ना। तो आप जो है किसी भक्त की पूजा करते हैं, किसी साधु की पूजा करते हैं, गुरु की पूजा करते हैं, तो ये जो गुरु हैं जो शुद्ध भक्त होते हैं तो वे पूजा के माध्यम बन जाते हैं, पारदर्शी माध्यम बन जाते हैं। पारदर्शी माध्यम समझते क्या? पारदर्शी माध्यम के अंदर जैसे चश्मा, तो मैं चश्मा के माध्यम से आप लोगों को देख रहा हूं, ठीक है ना। तो मैं चश्मा को नहीं देख रहा, मैं चश्मा के माध्यम से आप लोगों को देख रहा हूं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से जो है गुरु की पूजा के माध्यम से आप भगवान की पूजा कर रहे हैं तो वो गुरु की पूजा नहीं हो रही है ना। किसी देवता के माध्यम से आप भगवान की पूजा कर रहे हैं तो देवता की पूजा नहीं हो रही, वो माध्यम है। जैसे चश्मा के माध्यम से मैं आपको देख रहा हूं तो मैं क्या चश्मा को देख रहा हूं? मैं तो आपको देख रहा हूं। इस बात को समझिए, तो भगवान ये कह रहे हैं। अगर मान लीजिए कि मैं चश्मा को देखना शुरू करूं तो फिर आपको थोड़ी देख रहा हूं, तो आपको देखने की सही विधि थोड़ी है कि मैं चश्मा को देखूं, है ना। उसी प्रकार से किसी देवता की अगर आप पूजा करते हैं और देवता के प्रति आप श्रद्धा स्थिर करते हैं, उसी देवता के प्रति, उसी देवता के आप भक्त बन जाते हैं, तो भगवान की पूजा तो हो रही है लेकिन वो सही विधि नहीं है पूजा करने की। आप समझ रहे? तो ये जो बात है ये मतलब समझना है। तो हाँ, प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा इस गीता का श्लोक उद्धृत किया है ना। और गीता और भागवत में मिलान भी कितना बढ़िया होता है ना। क्योंकि भागवत में भी जो कश्यप मुनि ने जो बात बताई वही जो है मतलब गीता की बात से जो है प्रभुपाद किस तरह से मिलान कर रहे हैं इसको समझिए। क्योंकि प्रभुपाद के तात्पर्य जो है इसलिए बहुत विशेष है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, देवता गण तो श्री भगवान के सहायकों की तरह हैं, जो उनके हाथ पांव की तरह कार्य करते हैं। जो भगवान के वास्तविक संपर्क में नहीं है और ना उनकी वास्तविक स्थिति को समझ सकता है, उसे कभी कभी ये सलाह दी जाती है कि देवताओं की पूजा करे क्योंकि वे भगवान के अंग स्वरूप हैं। तो यहां पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि कभी कभी सलाह दी जाती है कि देवताओं की पूजा करो, है ना, क्योंकि आपके निकट जो है ये देवता हैं है? और देवता लोग जो है भोग प्रदान करते हैं, हमारे जीवन की आवश्यकताएं पूरी करते हैं, तो ठीक है देवताओं की पूजा करो, ये सलाह दी जाती है क्योंकि भगवान के अंग स्वरूप है। तो भगवान की सृष्टि की व्यवस्था में जो है भगवान ने देवताओं को नियुक्त किया है, कुछ अधिकार दिए हैं देवताओं को, तो कभी कभी सलाह दी जाती है कि देवताओं की पूजा करें। आगे, यदि स्त्रियां जो अपने पतियों के प्रति अत्यधिक आसक्त होती हैं अपने पतियों को वासुदेव के प्रतिनिधियों के रूप में पूजें तो उन्हें उसी प्रकार लाभ मिल सकता है जिस प्रकार अजामिल को अपने पुत्र नारायण का नाम लेने से। ये बड़ा गहरा है, प्रभुपाद की ये बात है बड़ी गहरी है, इस पर विचार करिए। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि अजामिल अपने पुत्र का नाम जब नारायण लेता था तो उसको जो है मतलब लाभ मिला। हालांकि आसक्ति तो पुत्र में थी और पुत्र में आसक्ति है तो भौतिक आसक्ति है तो बंधनकारी है। किसी की आसक्ति जो है अपने पुत्र में होती है, पत्नी में होती है, धन संपत्ति में होती है तो उसको बंधना पड़ेगा, इस भौतिक संसार में बंधना पड़ेगा। तो अपने पुत्र को नारायण का नाम जब वो लेता था, अपने पुत्र के लिए नारायण नाम लेता था, तो अपने पुत्र के लिए वो नारायण का नाम उच्चारण करता था और पुत्र में उसकी आसक्ति थी, लेकिन नारायण नाम फिर भी क्या हो गया, ये नाम तो आ गया भगवान का, आप समझे, तो बीच में जो है भगवान का नाम आ गया, ये नाम तो जो है दिव्य है, तो इससे क्या हुआ कि वो बंधन से छूट गया। हाँ, ये बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य है, अजामिल बंधन से कैसे छूट गया, है ना। ये भरत महाराज थे, कितनी ऊंची तपस्या में थे, हरण में आसक्त हो गई तो उनको हरण का शरीर मिल गया, आप समझ रहे हैं। और वो अजामिल जो है कितने गलत कर्म कर रहा है, वेश्यावृत्ति और साफ प्रकार के बुरे कर्म कर रहा है, हैं? और वो जो है वो मुक्त हो गया पापों से, सोचिए, वो अपने पुत्र में आ सकते है तो वही भौतिक आ सकती, भरत महाराज हरण में आ सकते, लेकिन भरत महाराज ने हरण को कोई नाम नहीं दिया था। अगर मान लीजिए उन्होंने हरण को नाम दे दिया होता, कृष्ण कुमार, माधव पुत्र, कुछ भी नाम दे दिया होता तो जो है बहुत सुरक्षित थे, है ना। और प्रभुपाद ने जो है दीक्षा विधि के द्वारा ये जो मतलब नाम देने की प्रथा बनाई है, वही नाम दे दिए जाए सबको, है ना, इसमें कितनी सुरक्षा है। रुक्मिणी, कृष्ण, है क्या नाम, नित्य धाम, और क्या नाम है, नित्यानंद आश्रय, नित्यानंद आश्रय, इन नामों से कितनी सुरक्षा होती है, क्योंकि नाम जो है, उसी प्रकार से यहां स्त्री के लिए जो है पति, यहां पर क्या लिखा है, प्रभुपाल लिखते हैं कि पतियों को जो है अगर वासुदेव के प्रतिनिधि के रूप में पूजें तो इसी प्रकार, क्योंकि भगवान ने जो है जैसे नाम धारण किए, नारायण नाम भगवान ने धारण किया है, अब कोई व्यक्ति नाम का प्रयोग कर रहा है किसी भी कारण से तो उसको जो है लाभ मिल रहा है, आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है, उसी प्रकार से स्त्री के लिए जो है भगवान ने उसके पति का रूप धारण किया हुआ है, नाम और रूप, आप समझे। अब यहां पर जो है पति का नाम कुछ भी हो, वो नाम नहीं ले रही, अपने पति का नाम नहीं ले रही मान लो, क्योंकि ये प्रथा है कि स्त्रियां अपने पतियों का नाम नहीं लेती हैं, तो नाम नहीं लेती हैं, है ना, लेकिन वो जो है अपने पति के रूप में जो है अगर वो पूजा कर रही है तो भगवान की पूजा हो रही है, है? तो यहां पर प्रभुपाद लिखते हैं कि अपने पतियों के प्रति अत्यधिक आसक्त होती हैं, अपने पतियों को वासुदेव के प्रतिनिधि के रूप में पूजे तो उसी प्रकार लाभ मिल सकता है जिस प्रकार अजामिल को अपने पुत्र नारायण का नाम लेने से। यद्यपि अजामिल को अपने पुत्र से प्यार था, मतलब प्यार का मतलब वही आसक्ति है ना, वो प्यार या प्रेम थोड़ी है, वो तो आसक्ति है, किंतु नारायण नाम के प्रति उसकी आसक्ति होने से उस नाम का बारंबार जप करने से ही उसे मुक्ति मिल सकी। तो नारायण नाम बार बार वो इसलिए ले रहा था कि मेरे पुत्र का नाम नारायण है, इसलिए उसको नारायण नाम में क्या हुई, आसक्ति हो गई, मुक्ति मिल गई, है ना। तो ये जो है विशेष बात है। आगे, भारत में आज भी पति को पति गुरु कहा जाता है, यदि पति तथा पत्नी कृष्ण भक्ति को बढ़ाने के लिए एक दूसरे पर आसक्त रहें तो उनका यह सहयोग अत्यंत लाभप्रद होगा। यहां पर प्रभुपाद जी अब क्या बता रहे हैं कि कृष्ण भक्ति बढ़ाने के लिए एक दूसरे पर आसक्त रहें। अब आसक्ति तो ये क्या है, बंधन है, लेकिन अगर कृष्ण को केंद्र बना लिया, अगर पति पत्नी जो है दोनों कृष्ण को केंद्र बना करके अगर एक दूसरे पर आसक्त हो जाते हैं तो क्या होता है, अत्यंत लाभप्रद होता है, ये सहयोग अत्यंत लाभप्रद होता है। तो कृष्ण को अगर केंद्र बना लिया जाए। आगे, यद्यपि वैदिक मंत्रों में कभी कभी इंद्र तथा अग्नि के नामों का चरण किया जाता है, इंद्राय स्वाहा, अग्नय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा इदम इंद्रा इदम नमम, अग्नय स्वाहा इदम अग्नय इदम नमम, ऐसा होता है ना। तो ये वैदिक मंत्रों में इस प्रकार से आहुतियां दी जाती हैं, किंतु वैदिक यज्ञ भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही होते हैं। तो इस बात को समझना है, इस बात को समझना है। आगे जब तक कोई इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है तब तक उसे देवताओं या अपने पति की पूजा करनी चाहिए। तो विशेष बात जो है प्रभुपाद जी क्या करें, इंद्रिय तृप्ति में अगर आसक्त हैं तो देवताओं की पूजा करो और अपने स्त्रियों के लिए अपने पति की पूजा करो, है ना। ये साथ साथ प्रभुपाद जी दूसरा संकेत दे रहे हैं, दूसरा संकेत ये भी दे रहे हैं कि अगर कृष्ण को प्राप्त करना है तो आप त्याग सकते हैं। अगर आप कृष्ण को प्राप्त करना है तो आप जो है पति का, पुत्र का, घर का, हर चीज का त्याग कर सकते हैं, अपनी संपत्ति का त्याग कर सकते हैं, है ना। जैसे गोपियां हैं, है ना, तो जो गोपी भाव है ये बहुत श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ भाव है, है ना, क्योंकि उन्होंने इस धर्म का भी त्यागा, इस धर्म का भी त्याग किया है। तो स्त्रियों के लिए बहुत बड़ा ये धर्म होता है, स्त्रियों के लिए बहुत बड़ा धर्म होता है पति की सेवा करना। तो अगर जो है स्त्री पति से जो है कुछ इंद्रिय तृप्ति नहीं चाहती, पति को भोगने की इच्छा से नहीं करती, सेवा कर्तव्य की भावना से करती है, तो उसमें बड़ी शक्ति आ जाती है। जैसे गांधारी ने जो है धृतराष्ट्र के लिए क्या किया, अपने आंखों में पट्टी बांध ली जीवन भर के लिए, है ना। तो उसके पास कितनी शक्ति आ गई थी, उसके पास बड़ी शक्ति आ गई थी। तो फिर उसने दुर्योधन को यह कहा था कि अब तुम जो है अपने शरीर के सब वस्त्र उतार दो और मैं तुमको देखूंगी तो तुम्हारा शरीर वज्र की तरह हो जाएगा, है ना। फिर भगवान ने ही जो है दुर्योधन को कहा कि तुम क्या कैसे पागल हो, तुम्हें क्या लज्जा नहीं है, तुम जो है वस्त्र उतार करके अपनी मां के सामने आओगे, है तो वस्त्र धारण करो, अपनी कमर में जो है वस्त्र धारण करो, है कमर खोल करके मत अपनी मां के सामने आओ। तो उसने वस्त्र धारण कर लिया, तो वो स्थान जो है उसका कमजोर रहा। और भीमसेन ने प्रतिज्ञा की ही थी कि मैं इसकी कमर तोड़ूंगा, है? क्योंकि उसने द्रौपदी के लिए सारा किया था कि तू बैठ मेरे इस कमर में, है ना। तो वो सब ऐसा ही व्यवस्था मतलब होनी थी, है ना, उसकी कमर तोड़ना था भीमसेन को। और भगवान ने जो है दुर्योधन को ऐसी बुद्धि दी कि तुम जो है कमर कैसे खोलेगा अपने माता के सामने। तो फिर अंत में फिर यही हुआ कि भीमसेन के गदा के प्रहार से उसका शरीर तो वज्र की तरह था, लेकिन जब कमर में गदा मारी तो टूट गई, उसकी कमर टूट गई, इस तरह से मारा गया वो। लेकिन यहां पर कहने का मतलब यह है कि गांधारी को इतनी शक्ति आ गई। और जब दुर्योधन की मृत्यु हो गई, उसके बाद फिर पांच पांडव जब गांधारी के सामने आए तो युधिष्ठिर महाराज को जो है गांधारी ने देखा, देख तो नहीं सकती थी, आंखों में पट्टी बंधी थी, तो पट्टी के नीचे से युधिष्ठिर महाराज के नाखूनों नाखून दिखाई दिए, तो नाखून काले पड़ गए युधिष्ठिर महाराज के, समझ गए, ऐसे पट्टी बंधी है तो इधर से तो दिखाई पड़ता ना। तो युधिष्ठिर महाराज खड़े थे तो पैर के नाखून जो है गांधारी को दिखाई दिए युधिष्ठिर महाराज के, तो काले पड़ गए युधिष्ठिर महाराज के पैर के नाखून काले पड़ गए। और पांचों के पांचों पांडव जो है डर करके खड़े हो गए पीछे, कृष्ण के पीछे खड़े हो गए, कृष्ण को आगे करके तो मतलब ये कि इतनी शक्ति गांधारी को, तो अपने पति के लिए जो है उसने इतना मतलब किया। और भगवान भी भागवतम में गोपियों से बताते हैं धर्म, सामान्य स्त्री के लिए धर्म बताते हैं। जब भगवान ने बंसी बजाई और गोपियां भगवान की बंसी की ध्वनि को सुनकर के वन में आईं, आधी रात में और अकेले भगवान से मिलने के लिए आईं, तो भगवान जो है शिक्षा देते हैं गोपियों के लिए, और क्या कहते हैं कि तुम्हें अपने पतियों की सेवा करनी चाहिए। दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जटो रोग धनो पिवा पति स्त्री बिना हाथव्यो लोके पात की। अगर पति दुशील हो, बुरे स्वभाव का हो, दुर्भगो इन बुरे भाग्य का हो, अभागा हो, वृद्ध हो, बूढ़ा हो, जड़ यानी मूर्ख हो, रोगी हो, दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगी धनो पिवा या निर्धन हो, पति स्त्री में ना आता हो, तो स्त्री को जो है पति का त्याग नहीं करना चाहिए। लोग अगर उत्तम लोगों की चाहती है, उत्तम लोग चाहती है, पाना चाहती है, उत्तम लोग यानी इस जीवन के बाद अच्छा अच्छी गति पाना चाहती है तो स्त्री को पति का त्याग नहीं करना चाहिए, अपात की, लेकिन अपात निष्पाप। फिर भी भगवान ने मतलब एक शर्त लगाई कि वो पति अगर पाप कर्म में नहीं लगा हुआ है तो पति का त्याग नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर पति के पापों में भी सहयोग दे स्त्री तो पाप भी लेगी, देगी नहीं लेगी, देगी। इसलिए भगवान ने क्या कहा कि अपात की, कि वो जो है अगर पापी नहीं है पति तो स्त्री को जो है अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। तो यहां पर ये बात है ना, और अगर पापी है तो स्त्री को अपने पति का त्याग कर देना चाहिए। तो कैसे त्याग कर सकती है, विधि विधि भी नहीं कि वो त्याग करके जाए तो क्या दूसरे पति को स्वीकार करेगी, वो भी ठीक नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो त्याग करना भी चाहिए और नहीं भी त्याग करना चाहिए, दोनों बातें हैं। क्योंकि उसके पाप में सहयोग ना दे वो है, लेकिन घर में तो उसको रहना ही पड़ेगा, पति की सुरक्षा में तो उसको रहना ही पड़ेगा ना, है ना। तो अगर पति पापी है तो किसी प्रकार से वो अपने पति की सुरक्षा में तो रहेगी ही, लेकिन उसके पापों में सहयोग ना दे। इस प्रकार से ये त्याग करना भी हो गया और त्याग नहीं करना भी हो गया, है ना। तो इस तरह से जो है स्त्री को अपने पति का त्याग कर देना चाहिए, इसका मतलब है उसके पापों में सहयोग नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की है, अभी हमारे पास कुछ समय है तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों की ओर से कुछ प्रश्न हो, चर्चा हो, से और कुछ नई बातें सामने आएंगी। हाँ जी हैंड भाई,
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रश्न ये है कि जैसे कई बार हम देखते हैं कि पति अच्छा नहीं है, शराब पीता है, कुछ करता है, अपनी पत्नी को मारता है, पीटता है, तो उसमें स्त्री को क्या करना चाहिए फिर?
हाँ देखो, ऐसा है कि स्त्री के लिए जो है जरूरी है कि वो भगवान की शरण ले, भगवान जो है उसको संरक्षण प्रदान करेंगे, उसको अब वर्तमान स्थिति में अगर जैसी भी स्थिति हो तो उसको तो रहना पड़ेगा, उसको सहन भी करना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ वो जो है हरे कृष्ण का जाप करे और प्रार्थना करे तो भगवान के नाम से सुरक्षा मिल सकती है ना। जैसे कि विप्र पत्नियां थीं, जब भगवान ब्रज में आए गऊ चराते हुए तो कुछ दूरी पर ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, तो भगवान ने अपने सखाओं को भेजा कुछ भोजन के लिए, तो उनके पतियों ने भोजन नहीं दिया। जब भगवान ने फिर भेजा कि अब उनकी पत्नियों के पास जाओ, तो वो जो है अपने पतियों की आज्ञा के बिना ही वो भोजन के थाल भर भर के और ले आई भगवान के पास, और फिर उन्होंने जो है भगवान से प्रार्थना की कि अब हम अपने पतियों के पास नहीं जा सकती, वो हमें स्वीकार नहीं करेंगे कि हमने उनका त्याग कर दिया, हमने उनकी आज्ञा के विरुद्ध आपके लिए हम भोजन ले आएंगे, तो अब हमें आप अपने शरण में दीजिए। तो भगवान ने फिर ये उत्तर दिया कि मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया है, मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया है, अब मैं आज्ञा देता हूं कि तुम जाओ उनके पास, और वो अब अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, तुम्हारा आदर करेंगे। भगवान ने कहा कि वे तुम्हारा आदर करेंगे, तुम्हारे पति तुम्हारा आदर करेंगे, तो वो भगवान की शरण उन्होंने ले ली। तो फिर क्या हुआ कि जब वापस आई तो सचमुच उनके पतियों ने जो है आदर पूर्वक उनको बिठाया यज्ञ में, और फिर अपनी ही निंदा करने लगे कि हमारे जो है जितनी तपस्या है और जितना भी विद्या है, अध्ययन है और ब्राह्मण का जो जीवन है, ये सब बेकार है, इन्होंने तो जो है वो सब प्राप्त कर लिया जो मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, और हमने तो हम तो इसी में लगे रहे, कुछ नहीं प्राप्त हुआ, तो वो अपनी ही निंदा करने लगे। तो इससे ये शिक्षा मिलती है कि हर स्थिति में जो है अगर भगवान की शरण ली जाए तो भगवान रक्षा करते हैं। द्रौपदी की भी कथा है कि उनके पति जो है पांचों के पांचों पति, लेकिन वो धर्म से ही बंधे हुए थे बेचारे, उनके पास तो पूरी शक्ति थी द्रौपदी की सुरक्षा करने की, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां बन गई कि वे बंध गए कुछ नियम से या कुछ सत्य से बंधे थे कि द्रौपदी की रक्षा नहीं कर सकते थे, है ना। और द्रौपदी का क्या हाल हो रहा था आपको पता है, क्या हाल हो रहा था ऐसे स्थिति में जो है, तो उसने क्या किया, कृष्ण की शरण ली और कृष्ण ने रक्षा की। तो कृष्ण तो रक्षा करने वाले हैं, लेकिन सच्चे भाव से कृष्ण की शरण लो, नाम का जो है जप करो, 10 प्रकार के अपराधों से बचो। तो ये जो है विधि है, ये हर समय और हर जगह और हर व्यक्ति के लिए ये चीज लागू होती है। फिर ये है कि अपने पिछले कर्मों के अनुसार अगर कुछ ऐसी स्थिति होती है और वो नहीं सुधर रही है, तो स्त्री को जो है मतलब ये सोचना चाहिए कि अपने कर्म का जो है ये जो है मुझे फल भोगना पड़ रहा है, और धैर्य से काम लेना चाहिए। ठीक है ना। हाँ, आपका प्रश्न।
तो वो किन परिस्थितियों में करनी चाहिए?
हाँ, यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि परिस्थितियां क्या हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति, जब तक कोई इंद्रिय तृप्ति के प्रति अधिक आसक्त रहता है, तब तक उसे देवताओं या अपने पति की पूजा करनी चाहिए। यहाँ पर मतलब मुख्य बात यही है कि अगर आप भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं, तो आपको जो है यज्ञ करना चाहिए। गीता में भगवान ये बात बताते हैं, देवान भावयतान इन ते देवा भावयन्तु वा, कि इन यज्ञों के द्वारा तुम देवताओं को प्रसन्न करो और वे देवता लोग जो है तुम्हें प्रसन्न करेंगे। तैरदत्ता ना प्रदाय भ्यो यो भूंगते स्थिति विषा, तैरदत्ता देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो व्यक्ति अप्रदाय मतलब बिना बदले में कुछ दिए भोगता है तो वो चोर है। तो सृष्टि का एक सामान्य नियम है कि आपको जो है जो भोग प्राप्त हो रहे हैं ये देवताओं की व्यवस्था से प्राप्त हो रहे हैं, आपकी फैक्ट्रियों में नहीं बन रहे हैं, चावल और चना और ये सब जो सब्जी फैक्ट्री में नहीं बन रहे हैं आपके, तो ये जो है देवताओं की व्यवस्था से हो रहा है। लेकिन अगर आप कृष्ण की पूजा करते हैं सीधे, तो फिर किसी देवता की पूजा अलग से करने की जरूरत नहीं है, आप परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, आपके ऊपर फिर कोई किसी का ऋण भी नहीं है। ठीक है ना। हाँ अच्छा, आप माइक नेम हैंड माइक।
तो जैसे गुरु जी भागवत में बताते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब अगर किसी को इंद्रिय तृप्ति भी करनी है तो उसको भी जो है भगवान की शरण लेनी चाहिए।
हाँ,
काम सर,
अच्छा प्रश्न है। इंद्रिय तृप्ति के लिए भी भगवान की शरण लेनी चाहिए, लेकिन बात यह है कि भगवान जो है तुरंत उसकी इच्छा पूरी नहीं कर दें। भगवान कहते हैं कांक्षंता कर्मणाम सिद्धिम जन्ति हि देवता क्षिप्रम मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अन्य देवता मिजंती, अन्य देवता, अन्य देवताओं की पूजा करते हैं है? तो जल्दी ही उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। देवता लोग, देवता उनकी तुरंत इच्छाएं पूरी कर देते हैं, है ना। लेकिन भगवान इच्छा पूरी करेंगे, लेकिन वो देखेंगे कि आपकी इच्छा किस समय पूरी की जाए कि आपके लिए कुछ खतरा पैदा ना हो, आपके आध्यात्मिक जीवन में खतरा पैदा ना हो, है कि नहीं। तो इसलिए लोग जो है फिर भगवान की पूजा नहीं करते, क्योंकि भगवान का तो जो है बहुत टाइम लगेगा, वो तो जल्दी प्रसन्न नहीं होंगे, है ना। तो अगर जो है व्यक्ति के अंदर दूसरे प्राणियों के प्रति ईर्ष्या द्वेष है, तो भगवान फिर जल्दी इच्छा पूरी नहीं करेंगे, क्योंकि उसका जो है वो गलत उपयोग करेगा, और से उसका और कर्म बनेगा, उसका उसका ही उसके लिए घातक है। इसलिए भगवान उसको ऐसे वरदान नहीं देते, है ना। जब कोई दूसरों प्राणियों के प्रति द्वेष रख करके भगवान की भक्ति करता है, तो भगवान उसकी इच्छा पूरी नहीं करते। ध्रुव महाराज की इच्छा भगवान ने 6 महीने पूरी कर दी, लेकिन ध्रुव महाराज को उनकी माता सुनीति ने नीति प्रदान की, अच्छी नीति प्रदान की। और क्या नीति प्रदान की, कि तुम अपनी सौतेली माता के प्रति ईर्ष्या का भाव मत रखो। सुरुचि ने जो है ध्रुव महाराज को जो कहा था, तो ध्रुव महाराज का हृदय बिंध गया था, वो मर्म जो है ध्रुव महाराज का बिंध गया था उसके वचन बाणों से। लेकिन सुनीति ने क्या कहा कि अपनी माता के जो है बात में भी जो है एक गुण तो है कि उसने कहा कि तुम भगवान का भजन करो। सुरुचि ने कहा कि तुम भगवान का भजन करो, उससे तुम जो है मेरी गर्भ से जन्म लोगे, तब तुम पिता की गोद में बैठ सकते हो। तो ये तो मतलब गलत बात थी ना कि भगवान अगर प्रसन्न होंगे तुम्हारे तो मेरे गर्भ से जन्म देंगे, यानी भगवान में भी उतनी शक्ति नहीं है कि पिता की तुम गोद में तुम बैठ पाओगे, और जब भगवान प्रसन्न होंगे तो मेरे गर्भ से तुम को जन्म देंगे तब तुम पिता की गोद में बैठ पाओगे, तो गलत था। लेकिन कम से कम एक बात तो सही है कि भगवान की तुम पूजा करो, भगवान को प्रसन्न करो, है ना। तो भगवान को प्रसन्न करो तो फिर कोई जरूरत नहीं है उनकी माता की, माता को माता के द्वारा फिर आपकी इच्छा पूरी होगी या पिता के द्वारा इच्छा पूरी होगी। तो ध्रुव महाराज ने फिर विचार किया कि मैं भगवान को प्रसन्न करूंगा तो जो पद मेरे पिता को भी नहीं प्राप्त हुआ, सुरुचि की बात तो दूर है, मेरे पिता को भी जो पद नहीं प्राप्त हुआ वो मैं भगवान से प्राप्त करूंगा। लेकिन सुनीति ने जो है ध्रुव महाराज को जो नीति प्रदान की, अच्छी नीति प्रदान की, वो ये है कि तुम जो है किसी प्राणी के प्रति ईर्ष्या का भाव मत रखो। आप सुन रहे, तो इससे क्या हुआ कि ध्रुव महाराज की इच्छा पूरी हो गई। तो भगवान जो है उसको तुरंत मतलब उसकी इच्छा पूरी कर सकते हैं अगर वो देखें कि भाई भाव जो है किसी प्राणी के प्रति जो है गलत नहीं है। लेकिन जैसे बृकासुर था तो वो चाहता था कि मैं जिसके सर में हाथ रखूं वही मर जाए, है ना। और इस कार्य के लिए नारद जी से पूछा था कि कौन देवता है जल्दी प्रसन्न होने वाले, तो भाई इसके लिए तो शिव जी जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं, विष्णु तो जहां जल्दी प्रसन्न होते ना जल्दी दुष्ट होते हैं, तो शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। आशुतोष जाओ उनके पास जाओ। तो ये तो वे लोग जो है काम में स्थिर ज्ञान कामनाओं के द्वारा उनका ज्ञानी हरण हो चुका है, ज्ञानी हरण हो चुका है कि हमें जन्म मरण से छूटना है। जो भक्त होते हैं उनके अंदर अगर कुछ भावना होती भी कुछ अगर मान लो इच्छा होती है भोगने की, लेकिन साथ साथ उनके पास ये ज्ञान भी रहता है कि इस भौतिक संसार से भी हमको छूटना है, है ना। तो अगर भगवान इच्छा मेरी ना भी पूरी करें भोगने की, है तो भी मुझे भगवान को नहीं छोड़ना है, तो उसको उदार कहते हैं। इसलिए भगवान के उदारा सर्वे वैति, है ना, चतुर्विधा भजन्ते माम। भगवान ने कहा चार प्रकार से, लेकिन सुकृति हैं, सुकृति हैं, पुण्यात्मा है, इसलिए मेरा भजन करते हैं। तो उनके अंदर बहुत कामनाएं भी हैं, लेकिन मैं पूरी ना भी करूं तो भी जो है वो मुझे नहीं छोड़ते हैं, तो ये उनकी उदारता है। लेकिन जो पुण्यात्मा नहीं है, दुष्कृति हैं, पापी हैं, तो वो कहेंगे क्या चक्कर में पड़ो इस हरे कृष्ण वालों के, ये लोग जो है हरे कृष्ण करेंगे, इससे कुछ होने वाला तो है नहीं, मुझे जो है मतलब तुरंत मतलब ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए वो चाहिए, है ना, तो वो नहीं करेंगे। इसलिए कृष्ण कहते हैं न माम दुष्कृतों मूढ़ा प्रपद्यन्ते, मूढ़ नराधम, है ना, तो मेरी शरण में नहीं आते, है ना। काम है तहते हृदय ज्ञान, कामनाओं के कारण उनका ज्ञान हरण हो चुका है, तो ये नहीं समझ रहे कि हाँ इस जीवन में कुछ भी अगर कामना पूरी होगी, है ना, तो ये तो जो है नष्ट होने वाली है, शरीर के साथ नष्ट हो जाएगा। अब बृकासुर की कामना पूरी हुई, शिवजी ने जो है उसको वरदान दे दिया कि तुम जिसके स्तर में हाथ रखो तो वो जो है मर जाएगा, आप समझे। और 7 दिन तक उसने शरीर का मांस काट काट करके अग्नि में डाला था, 7 दिन तक लगातार अपने शरीर का मांस काट काट करके अग्नि में डालता रहा, है ना, तो उसको वरदान मिल गया, लेकिन ये वरदान केवल 5 मिनट तक रहा। 5 मिनट तक उसको ये वरदान मिला और उसका जो उपयोग हुआ वो यही हुआ कि अपने सिर में उसने हाथ रखा और मर गया, और फिर वरदान भी खत्म। अब थोड़ी कि अगले जन्म में उसको ये वरदान उसके साथ रहेगा, नहीं रहेगा ना। हिरण्यकशिपु ने भी जो है वरदान मांगा ब्रह्मा जी से, तो कितने कितने वरदान मांग लिए, वो कितनी उसने तपस्या की थी, 100 देवताओं के वर्ष 36,000 साल तक तपस्या की थी, बिन खाया पिया नहीं ना, और एड़ी केवल खड़ा हुआ और ऊपर हाथ उठा करके और आकाश में देखता रहा, शरीर में जो है कुछ नहीं रहा, खून मांस कुछ नहीं रहा, है ना। और ब्रह्मा जी ने वरदान दिया और उस वरदान को पाने के 5 साल तक जो है वो उसको वरदान मिला, उसके बाद खत्म। नरसिंह भगवान ने उसका वध कर दिया है ना, और जब मरने के बाद अब अगला जीवन मिला तो क्या वरदान रहा उसके साथ, सब खत्म। तो ज्ञान नहीं है उनके पास ना, तो चूंकि उनके पास ज्ञान नहीं है इसलिए जो है अन्य देवताओं की वो जो है शरण लेते हैं ना। जिनके पास ज्ञान है तो उनके लिए जो है मतलब ये है कि भगवान की पूजा करना है। अगर देवताओं की पूजा कभी किसी कारण से अगर कर रहे हैं तो वो भगवान को ही केंद्र मान करके कर रहे हैं कि इन देवता के माध्यम से भगवान की पूजा हो रही है। तो जो है कोई मंदिर भी मिलता है अगर मान लो देवी का या शिव जी का, तो जो है प्रणाम करता है। किस प्रकार से प्रणाम करता है कि परम वैष्णवी हैं या परम वैष्णव हैं, शिव जी भगवान के भक्त हैं, तो स्वतंत्र नहीं मानना भगवान से है ना। तो भगवान यही कहते हैं अन्य देवता भक्ता, अन्य देवताओं के जो भक्त होते हैं तो जब वो उनकी पूजा करते हैं तो वो देवताओं को स्वतंत्र मान लेते हैं कि ये भगवान से स्वतंत्र हैं, ये श्रद्धा अपनी स्थिर कर लेते हैं उसी देवता में, तो वो मेरी पूजा करें नहीं, विधि पूर्वक पूजन नहीं कर रहे, तो उनको मेरी पूजा का फल नहीं प्राप्त होता, ठीक है ना। हाँ जी,
तो धन्यवाद पूजा, आपने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा, आपने बहुत अच्छे से समझाया। इसमें दो मेरे प्रश्न और थे इस प्रसंग में, जैसे एक पत्नी को आपने ऐसे बताया सिद्धांत यहाँ थे कि पत्नी को अपने पति की सेवा ऐसे रूप से करना चाहिए उसको वासुदेव का प्रतिनिधि मान के, लेकिन अगर पति भक्त नहीं हो और लड़से पापी भी नहीं हो तो उसको अगर वो भगवान के रूप में उसको मान करती है तो उसको फल प्राप्त होगा, मतलब वो
हाँ हाँ मतलब कहने का ये है कि उसके पापों में सहयोग ना दे, वो उसके पापों में सहयोग ना दे तो अगर वो मतलब कुछ कर रही है तो ठीक है, लेकिन समस्या ये होती है कि अगर बहुत अत्याचार कर रहा है, बहुत दुर्व्यवहार कर रहा है ना, तो फिर उसके लिए फिर सहन करना होता है, उसको सहन करना चाहिए और साथ साथ दूरी भी रखना चाहिए। फिर ये भी नहीं है कि उसको वो अवसर दे कि वो और अत्याचार करे। कभी अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि वो पति का सम्मान करती है तो उतना ही जो है वो उल्टा व्यवहार करें। कई बार तो ऐसे भी होते हैं कि कुछ मूर्ख लोग होते हैं, अगर आप उनका सम्मान करते हो, उनको सम्मान देते हो तो फिर और ज़्यादा सिर में चढ़ते हैं, तो सोचते हैं तो बेवकूफ़ है ये, मेरा सम्मान कर रहा है इसका मतलब ये मूर्ख है। तो ऐसे फिर पत्नी को जो है अगर कठोर व्यवहार करना पड़े तो वह भी जरूरी है, आप समझे। तो कई बार जो है मतलब ऐसी भी स्थितियाँ आ जाती हैं कि पत्नी को कठोर व्यवहार भी करना पड़ सकता है और ऐसे में भी पति कुछ सुधर सकता है। तो पत्नी जो है कठोर व्यवहार के द्वारा भी अगर अपने पति को सुधार सकती है तो सुधारे, ठीक है ना। और कोई
तो उसमें ये तो वही समझ आता था।
और किसी का प्रश्न है आपका पहले इनको, फिर बाद में अगर मौका मिले।
बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी क्लास के लिए। मेरा प्रश्न ये था कि गुरु जी जो पति जो होता है वो बताया कि वासुदेव का प्रतिनिधि है, वो किस अर्थ में प्रतिनिधि होता है वासुदेव का,
किस अर्थ में प्रतिनिधि। देखिए ये जो व्यवस्था है शास्त्रों में जो व्यवस्था बताई गई है कि इस भौतिक संसार में स्त्री पुरुष का जो है एक आकर्षण है और वो इंद्रिय तृप्ति के कारण जो है स्त्री का भी मन बहुत विचलित होता है दूसरे दूसरे पुरुषों में, है ना। तो स्त्रियों के लिए मतलब विशेष रूप से जो है बड़ा मतलब ये प्रबल होता है, जो काम वासना बड़ी प्रबल होती है, तो स्त्रियों के लिए विशेष रूप से ये विधि बताई गई है कि वो अपने पति के सिवा और दूसरे पुरुष से संपर्क ना करे, मतलब शारीरिक संपर्क ना करे। तो इसके लिए पत्नी स्त्री के लिए जो है मतलब ये बातें बहुत जरूरी बताई गई हैं कि वो जो है ऐसे नियमों में लगी रहे और जब ऐसे जो शास्त्र साधु आचार्य ये सब जब गाइडेंस देते हैं तो स्त्री का जो मन है वो बस में रहता है, और अगर उसको स्वच्छंदता मिल जाती है तो फिर समाज का जो है फिर सर्वनाश होता है। जैसे आजकल का समाज है ना, तो स्त्रियों को जो है स्वतंत्रता, स्त्रियों को स्वतंत्रता के नाम पर वास्तव में क्या हो रहा है, पूरे समाज का पतन हो रहा है ना, स्त्रियों की स्वतंत्रता के नाम पर, और उनको भी स्वतंत्रता नहीं मिल रही, उनका भी शोषण ही हो रहा है, उनकी भी स्वतंत्रता के नाम पर उनका ही शोषण हो रहा है। जो पुरुष लोग जो है नारी स्वतंत्रता आंदोलन चला रहे हैं और दिखा रहे हैं कि उनका उनकी बड़ी सहानुभूति है स्त्रियों के प्रति, तो वास्तव में वे भी जो है स्त्रियों के शोषण का ही इरादे से ये स्वतंत्रता का जो है ये समर्थन कर रहे हैं। स्त्रियों की इसमें स्वतंत्रता वो होती नहीं वास्तव में, उनके लिए तो और कष्ट और बंधन और ज्यादा उनके लिए विपत्तियां हैं स्त्रियों के लिए, लेकिन इस बात को समझते नहीं। और फिर जो बच्चे पैदा होते हैं वो वर्ण संकर बच्चे पैदा होते हैं, वो भी विनाशकारी होते हैं। तो इसलिए स्त्रियों के लिए जो है मतलब अगर स्त्री जो है अपने मन को इस तरह से काबू में करे तो फिर होता क्या है कि गर्भाधान के समय वो जो है इसी धर्म का विचार करती है, अपने धर्म का विचार करती है, तो इससे जो है जो गर्भाधान संस्कार जो है मतलब उसको मिलता है, बच्चे को जो बच्चा गर्भ में आता है उसको संस्कार मिलता है और उस वो संस्कार बड़ा शक्तिशाली होता है बच्चे का। तो स्त्री जो है जिस भाव का चिंतन करती है, फिर गर्भ के अंदर भी जो है स्त्री जो है जिस भाव का चिंतन करती है वो भाव बच्चे के जीवन में आते हैं और वो बड़े शक्तिशाली है ना। तो सबसे अच्छा है कृष्ण का चिंतन करना और जो है प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ना और हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना सबसे अच्छा है। लेकिन अगर इतना नहीं है तो कम से कम ये उसका जो कर्तव्य है अपने पति के प्रति, तो उस अगर इसमें भी अगर वो अपना मन लगाती है तो कम से कम उसकी सुरक्षा होती है, पापों से सुरक्षा होती है। और जो गर्भ के अंदर बच्चा है तो उसकी भी जो सुरक्षा होती है कि वो भी जो है मतलब उसके संस्कार जो है बुरे तो नहीं होंगे। तो ये सब चीज़ें स्त्रियों के लिए बड़े मतलब आवश्यक नियम है, इसलिए वो कुलवती स्त्रियाँ कहलाती हैं और वो जो है कुल धर्म का पालन करती हैं। तो कुल के जो है जो बच्चे होते हैं तो वो जो है फिर कुल को उजागर करते हैं। लेकिन अगर स्त्रियां जो है दूषित हो जाती हैं, स्त्री से दुष्टासु वार्ष में जायते वर्ण संकरा, तो पूरा समाज नष्ट हो जाता है। दूषित स्त्रियां दूषित हो गई तो पूरा समाज जो है दूषित हो जाता है ना। और संकरो नरकाय कुलभनाना, फिर नरक की तरह जो है ये समाज का जो वातावरण है नरक की तरह हो जाता है। तो स्त्रियों की सुरक्षा की बहुत आवश्यकता है, ठीक है ना। और कोई, चलो आप ही अगर कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा है तो फिर एक से ज्यादा प्रश्न पूछ सकते हैं।
धन्यवाद पूजी। इसमें मैं पूछना था गंधारी को, जैसे आपने गंधारी का जो समझाया, गंधारी को शक्ति मिली क्योंकि वो उन्होंने जो धृतराष्ट्र थे उनकी बहुत सेवा की, लेकिन धृतराष्ट्र देखा जाए तो निष्पाप तो नहीं थे, इस चीज को कैसे समझेंगे, फिर भी गंधारी को इतनी शक्ति मिली कि भगवान के भक्तों के लिए भी उन्होंने मतलब इस तरीके से हुआ जैसे आपने जो बताया।
हाँ, धृतराष्ट्र जो है वैसे देखा जाए तो वो निष्पाप तो नहीं था, क्योंकि वो जो है सबसे ज्यादा जिम्मेदार तो वही था जो कि दुर्योधन के कार्य में सहयोग दे रहा था। लेकिन गांधारी जो है गांधारी भी दुर्योधन को समझाती थी, धृतराष्ट्र भी समझाता था, दुर्योधन को समझाता था धृतराष्ट्र भी कि ऐसा नहीं है। लेकिन उसकी पुत्र में आसक्ति फिर ऐसी थी कि पुत्र नहीं मानता है, तो उसके हृदय की एक ऐसी कमजोरी थी, निर्बलता जिसे मोह कहें, कि वो जो है फिर उनके साथ साथ चलता था। और लेकिन विदुर जी का बड़ा सम्मान करता था, विदुर जी से पूछता था और विदुर जी उसको जो है सही सम्मति देते थे, तो बड़ा सम्मान करता था। फिर कहता था कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा जो मन है वो मोह के वशीभूत होकर के तुम्हारी शिक्षाओं का मैं पालन नहीं कर पा रहा हूँ। तो धृतराष्ट्र को अच्छा भी कहा जा सकता है कि ये एक दृष्टि से अच्छा ही था धृतराष्ट्र, और लेकिन एक मतलब उसकी वो कमजोरी थी। तो इस प्रकार से धृतराष्ट्र के ऊपर तो दोष आया और गांधारी के ऊपर भी दोष आया। मतलब गांधारी ने फिर भगवान को भी मतलब कहा कि मैं श्राप दूंगी, केशव मैं आपको श्राप दूंगी है? तो फिर भगवान ने फिर यही कहा कि तुम जो है दोष तो तुम्हारा ही है कि तुम्हारा जो पुत्र था उसको तुमने अगुआ बनाया और जितने भी अधर्म हैं वो सब उसने किए है? और तुम उस दोष को मेरे ऊपर मढ़ना चाहती हो, अपनी तपस्या को तुम नष्ट कर रहे हो। भगवान ने फिर स्पष्ट कहा तो मुझे सांप देने का मतलब क्या है, तो अपनी तपस्या को नष्ट कर रहे हो, तुमने बड़ा परिश्रम किया है, जो भी तुमने पतिव्रत किया है, धर्म किया है, जो कुछ किया है ना, लेकिन मत करो, ऐसा मत करो, तुम समझो कि तुम्हारा क्या दोष है, तो अपने दोष को समझो, है ना। तो भगवान ने जब कठोर शब्दों में उसको डांटा तो उसको समझ आया गांधारी को। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप कृष्ण को केंद्र नहीं बनाते हैं तो जितनी भी तपस्या है वो फिर क्या है, आपकी जो है वो तपस्या सुरक्षित नहीं है। आप जितने भी अच्छे कर्म कर रहे हैं अगर आप कृष्ण को केंद्र नहीं बनाते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं से इधर उधर आप फिसलेंगे और गिरेंगे और सब नष्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए ज्यादा अच्छा है कि कृष्ण को केंद्र बनाया जाए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया जाए, ठीक है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधिका रमण भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री श्री गौरनिताय भगवान की जय। कृष्ण बलराम भगवान की जय। हो